अंधेरे में परम अभिव्यक्ति की खोज, डॉक्टर नामवर सिंह। इसीलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर झांक झांक कर देखता हूँ हर एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र व हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश व राजनैतिक परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श, विवेक प्रक्रिया, क्रियागत परिणति। खोजता हूँ पठार, पहाड़, समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्म संभवा। अंधेरे में कविता की ये अंतिम पंक्तियाँ उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती हैं जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह इस कविता का मूल तथ्य अस्मिता की खोज, किंतु कुछ अन्य व्यक्तिवादी कवियों की तरह इस खोज में किसी प्रकार की आध्यात्मिकता या रहस्यवाद नहीं, बल्कि गली सड़क की गतिविधि, राजनीतिक परिस्थिति और अनेक मानव चरित्रों की आत्मा के इतिहास का वास्तविक परिवेश है। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। नाटकीय कौशल के लिए कविता का मैं दो व्यक्ति चरित्रों में विभक्त कर दिया गया है, एक है काव्य नायक मैं और दूसरा है उसका प्रतिरूप वह। यह विभाजन वस्तुतः एक नाटकीय कौशल मात्र नहीं, बल्कि इसका आधार आत्मनिर्वासन, सेल्फ एलियनेशन है। अंधेरे में का काव्य नायक एक आत्मनिर्वासित व्यक्ति है जिसके आत्मनिर्वासन का प्रतीक है उसका गुहावास। दोस्तोयेवस्की के अंडरग्राउंड मैन के समान ही यह व्यक्ति भी बाह्य परिस्थितियों से भय खाकर एक तिलस्मी खोह में निवास करता है। कविता का आरंभ इस तिलस्मी खोह के रहस्यमय दृश्य से होता है जो अपने प्रभाव में काफी नाटकीय है। जिंदगी के कमरों में इतना अंधेरे, लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, किंतु यह रहस्यमय व्यक्ति दिखाई नहीं देता, केवल उसके चलने की आहट भर सुनाई देती है। अकस्मात भीत से फूले हुए पलस्तर गिरते हैं और भीत पर खुद बखुद कोई बड़ा चेहरा बन जाता है, नुकीली नाक, भव्य ललाट, दृढ़ हनु। प्रश्न उठता है कौन मनु, और इस प्रश्न के साथ ही जैसे काव्य नायक प्रकट होता है, उसे याद आता है कि यह रहस्यमय व्यक्ति वही है जो कभी शहर के बाहर पहाड़ी के उस पार, तालाब के सलिल के तमश्याम शीशे में कुहरीली श्वेत आकृति के रूप में प्रकट हुआ था, और फिर थोड़ी देर बाद लाल लाल कोहरे में से एक रक्तालोक स्नात पुरुष के रूप में निकला हुआ दिखा था। रात के अंधेरे में बंद दरवाजे की सांकल खटखटाने वाला पुरुष शायद वही है। आत्मनिर्वासित काव्य नायक को पता है कि वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है, तथा हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह आत्मा की प्रतिमा है। उस प्रतिरूप से काव्य नायक डरता है, कतराता रहता है, और इसीलिए उसे टालता भी है कि स्वयं उसे अपनी कमजोरियों से लगाव है। उसे डर इसलिए है कि वह हृदय को देता है बिजली के झटके और तुंग शिखर के खतरनाक कगार पर बिठाकर रस्सी के पुल से पर्वत संधि के गह्वर पार करने के लिए कहता है। इसके साथ ही यह भी तथ्य है कि भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका सह नहीं सकता, फिर भी नहीं नहीं उसको मैं छोड़ नहीं सकता। भय और प्रीति का यह नाटकीय द्वंद्व ही इस आत्मनिर्वासित मन का मुख्य आकर्षण है। अंततः वह दरवाजा खोलने का संकल्प करता है, किंतु देखता है कि बाहर कोई नहीं, कोई नहीं बाहर। रात का पक्षी कहता है वह चला गया है, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर। वह निकल गया है गांव में, शहर में, उसको तू खोज, अब उसका तू शोध कर। रविंद्रनाथ ठाकुर के गीतांजलि के एक गीत में भी कुछ कुछ इसी प्रकार की पंक्तियां हैं, किंतु उस रहस्यवादी संदर्भ से इन पंक्तियों का संदर्भ कितना भिन्न है। रात के पक्षी के कथन के बावजूद आत्मनिर्वासित काव्य नायक को यह रहस्यमय पुरुष फिर दिखाई पड़ता है, लेकिन स्वप्न में। इस बार उसके दर्शन उस समय होते हैं जब शहर में कर्फ्यू लगा है और मार्शल लॉ जारी है। रात के सन्नाटे में सिरफिरा एक जन आत्मोद्बोधमय कोई गान गाता है, जिसे सुनते ही साफ हो जाता है कि व्यक्तित्व तो अपना ही, अपने से खोया हुआ, वही उसी अकस्मात मिलता था रात में। गान का प्रभाव यह है कि प्रत्यक्ष मैं खड़ा हो गया किसी छाया मूर्ति या समक्ष स्वयं के। काव्य नायक नाटक के घटनाक्रम में यह रहस्यमय पुरुष एक बार और मिलता है, अंतिम बार, जब शहर में जनक्रांति छिड़ जाती है। माहौल ऐसा है कि कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। आत्मनिर्वासित व्यक्ति प्रसन्न मुद्रा में गैलरी में खड़ा होता है कि दिखाई पड़ता है एकाएक वह व्यक्ति आंखों के सामने गलियों में, सड़कों पर, लोगों की भीड़ में चला जा रहा है। पुकारने को खुलता है मुंह कि अकस्मात वह दिखा वह दिखा, वह फिर खो गया किसी जन यूथ में, उठी हुई बांह यह उठी हुई रह गई। खोज और उपलब्धि के बीच की दुविधा या सस्पेंस ही अंधेरे में कविता को अद्भुत नाटकीयता प्रदान करती है, और यह केवल काव्य शैली का चमत्कार नहीं बल्कि कथ्य की गहरी अर्थवत्ता का सूचक है। अस्मिता की खोज संबंधी ज्यादातर कविताओं में या तो केवल एक प्रकार की हताश खोज मिलती है या फिर उपलब्धि की बलात् आत्मतुष्टि। आकस्मिक नहीं है कि दोनों ही प्रकार की कविताएं प्रायः प्रकृत्या प्रगीत धर्मी होती हैं। प्रगीत शैली के अनुरूप ही उनके कथ्य में भी अस्मिता की खोज का अति सरलीकृत सपाट रूप मिलता है। मुक्तिबोध ने इस सपाटता से बचकर एक तीखे तनाव को सफलता के साथ व्यंजित किया है, जिसका मुख्य आधार अंधेरे में कविता का कौशलपूर्ण घटना विन्यास है। अरस्तु ने जिस अर्थ में मिथोस को त्रासदी की आत्मा कहा था, उसकी पुष्टि एक तरह से अंधेरे में के घटना विन्यास से होती है। इस घटना विन्यास का महत्व इस दृष्टि से भी है कि इसके द्वारा अस्मिता को एक व्यापक संदर्भ प्राप्त होता है। आत्मनिर्वासन और अस्मिता के लोप की चर्चा तो प्रायः की जाती है, किंतु उसके वस्तुगत कारणों का उल्लेख बहुत कम किया जाता है। अंधेरे में कविता के अंतर्गत स्वप्न कथा के रूप में तीन घटनाएं वर्णित हैं, किसी मृत दल की शोभा यात्रा, सैनिक शासन और जनक्रांति का सूत्रपात। स्पष्टतः पहली दोनों घटनाएं कवि की दृष्टि में अस्मिता के खोने का वस्तुगत कारण उपस्थित करती हैं। किसी मृत दल की शोभा यात्रा और सैनिक शासन के आतंक से अस्मिता के खोने की बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। संदर्भ की भयावहता अस्मिता के बोध की तीव्रता को और भी उभार देती है। भावबोध की यह तीव्रता संदर्भ के जिस प्रभावशाली चित्र से संबद्ध है, वह स्वयं मुक्तिबोध के शब्दों में भाव का वस्तुमूलक आकलन है। इसे ही आचार्य शुक्ल ने विभावन व्यापार की संज्ञा दी है और टीएस एलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की। अंधेरे में कविता का प्रभाव जिस परिवेश के चित्रण पर निर्भर है, उसकी चित्रण कला ही विचारणीय है। सबसे पहले कविता में रात के अंधेरे की भूमिका, क्या इस कविता में वातावरण के प्रभाव का बहुत कुछ श्रेय अंधेरे को नहीं है? अंधेरा काव्यगत वातावरण को भयावह और रहस्यमय बनाने के साथ ही मूर्त भी बनाता है। अंधेरे में वस्तुओं को मूर्तिमान करने की विशेष क्षमता इसलिए होती है कि आसपास की बहुत सी वस्तुएं ओझल हो जाती हैं, इसलिए अभीष्ट वस्तुएं विशेष रूप से उद्भासित होती हैं। अंधेरे में रेखाओं की संख्या कम होती है, किंतु उनके उभार की मात्रा अधिक होती है। उदाहरण के लिए मृत दल की शोभा यात्रा का चित्र इस कविता में इसीलिए इतना स्फुट विविड है कि उसकी पीठिका में रात का अंधकार है। दिन के उजाले में ही जुलूस शहर की भीड़ भाड़ में दब जाता, किंतु आधी रात के सन्नाटे में उभर कर सामने आता है। मशाल की रोशनी में लोगों के चेहरे, उनकी पोशाक, घोड़ों के रंग और संगीन की नोकें और भी चमक उठती हैं। यहाँ तक कि सन्नाटा बैंड की आवाज़ को भी उभार देता है। दिन के उजाले में कोलतार की जो सड़क मामूली मालूम होती है, वही रात के अंधेरे में मरी हुई, खींची हुई कोई काले जिहवा मालूम होती है। इसी तरह चौराहे, दरख्त और घंटाघर भी इस अंधकार के जादुई असर में और के और हो जाते हैं। उल्लेखनीय है कि सीमांतवादी भावबोध के लेखकों ने अपनी कृतियों में प्रायः अंधकार का उपयोग किया है। निर्मल वर्मा की लंदन की एक रात कहानी में भी यही अंधकार है। दोस्तोयेवस्की के उपन्यासों का घटनाकाल प्रायः रात से संबद्ध है। कोई चाहे तो इसे एक कलारूढ़ भी कह सकता है, किंतु मुक्तिबोध ने अंधकार को स्वप्न कथा से संबद्ध करके एक और आयाम दे दिया है। कथन शैली की दृष्टि में अंधेरे में एक स्वप्न कथा है। हिंदी में कविता के अंतर्गत फैंटेसी के उपयोग के लिए मुक्तिबोध विख्यात हैं, किंतु इस उपयोग की कलात्मक सार्थकता पर बहुत कम विचार किया गया है। स्वयं मुक्तिबोध फैंटेसी शब्द का प्रयोग काफी व्यापक अर्थ में करते हैं। उनके लिए कामायनी भी एक तरह की फैंटेसी थी। इस प्रकार स्वप्न कथा फैंटेसी का एक प्रकार मात्र है। मुक्तिबोध की दृष्टि में कविता के अंतर्गत फैंटेसी के प्रयोग की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि लेखक वास्तविकता के प्रदीर्घ चित्रण से बच जाता है। कहनाना होगा कि स्वप्न शैली में कथा कहने के कारण अंधेरे में कविता में काफी मितव्ययता और सघनता आ गई है, तथा वर्णन के अनावश्यक विस्तार से अपने आप ही निजात मिल गई है। स्वप्न शैली के कारण एक और कथा अनिवार्यतः चित्रात्मक हो गई है। एक ओर कथा अनिवार्यतः चित्रात्मक हो गई तो दूसरी ओर एक से अधिक कथाओं के क्रमबद्ध संयोजन में भी लाघव आ गया, क्योंकि स्वप्न क्रम प्रकृत्या अतार्किक और विषयधर्मी होता है। स्वप्न शैली के साथ एक सुविधा यह भी है कि आवश्यकता अनुसार देश और काल की दृष्टि से नितांत असंबद्ध तथा दूर की वस्तुओं को भी एकत्र रखा जा सकता है। अंधेरे में के अंतर्गत तालस्ताय, तिलक और गांधी इसी जादू की छड़ी से बुला लिए गए हैं। इसी प्रकार सामान्यतः असंभव प्रतीत होने वाली घटना भी स्वप्न संभव दिखाई जा सकती है और उसके औचित्य के बारे में कोई संदेह भी नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए अंधेरे में के अंदर गांधी जी काव्य नायक के कंधे पर एक शिशु रखकर अचानक गायब हो जाते हैं और वही शिशु थोड़ी देर बाद सूरजमुखी फूल के गुच्छे में बदल जाता है, जिसके स्थान पर अगले क्षण वजनदार राइफल हो जाती है। यदि स्वप्न कथा की शैली न होती तो इस प्रकार के चमत्कार कैसे संभव होते। किंतु ये चमत्कार अपने आप में सार्थक नहीं है। सवाल यह है कि कवि इन चमत्कारों के जरिए हासिल क्या करता है। यदि ये चमत्कार वास्तविकता के किसी विशेष पहलू को उजागर करने में समर्थ नहीं होते तो वे केवल कुतूहल के विषय होकर रह जाएंगे। यहाँ यथार्थवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत अयथार्थवादी शिल्प के औचित्य का प्रश्न उठता है। समाजवादी यथार्थवाद के आग्रही को जड़ लेखकों ने काफ्का के ही नहीं बल्कि बर्टोल्ट ब्रेख्त के अयथार्थवादी शिल्प पर ऐतराज किया है। किंतु मुक्तिबोध ने कामायनी एक पुनर्विचार की भूमिका में इस विषय पर निर्भ्रांत विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि यथार्थवादी शिल्प और यथार्थवादी दृष्टिकोण में अंतर है। यह बहुत ही संभव है कि यथार्थवादी शिल्प के विपरीत जो भाववादी शिल्प हैं उस शिल्प के अंतर्गत जीवन को समझने की दृष्टि यथार्थवादी रही हो। इसी संदर्भ में मुक्तिबोध ने जैसा कि कुछ पहले कहा है, साहित्यिक कलाकार अपनी विधायक कल्पना द्वारा जीवन की पुनर्रचना करता है। जीवन की यह पुनर्रचना की ही कलाकृति बनती है। कला में जीवन की जो पुनर्रचना होती है वह सारतः उस जीवन का प्रतिनिधित्व करती है जो जीवन इस जगत में वस्तुतः जिया और भोगा जाता है, स्वयं द्वारा अन्यों द्वारा। यह जीवन जब कल्पना द्वारा पुनर्रचित होता है तब उस पुनर्रचित जीवन में तथा वास्तविक जगत क्षेत्र में जिए और भोगे गए जीवन में गुणात्मक अंतर उत्पन्न हो जाता है। पुनर्रचित जीवन जिए और भोगे गए जीवन से सारतः एक होते हुए भी स्वरूपतः भिन्न होता है। यदि पुनर्रचित जीवन वास्तविक जीवन से निःसारतः एक हो, सिर्फ ऊपरी तौर पर एक सपना रखता हो, एक सापन रखता हो, तो पुनर्रचित जीवन निष्फल हो जाता है। पुनर्रचित जीवन और वास्तविक जीवन के बीच जो अलगाव है, उनकी जो पृथक पृथक स्थिति है, उस अलगाव और पृथक पृथक स्थिति के कारण ही कला के भीतर से सारे मूर्त विधान के बावजूद उस कला में मूलबद्ध रूप से एक अमूर्तीकरण और सामान्यीकरण उत्पन्न होता है। अंधेरे में कविता के अंतर्गत अपनाए गए स्वप्न कला के अयथार्थवादी शिल्प में निहित यथार्थवादी दृष्टिकोण की इसमें स्पष्ट व्याख्या अनावश्यक है। निसंदेह अंधेरे में सामान्य स्वप्न कथा नहीं है बल्कि दुःस्वप्न का कथालोक है, जिसमें हर चीज प्रायः कुछ विकृत कुछ अन्यथा रूप में दृष्टिगत होती है। किंतु काव्य नायक की असाधारण मनस्थिति को देखते हुए यह असंगत नहीं लगता। काव्य नायक के मन पर परिस्थितियों का इतना गहरा दबाव है कि वह अतिरिक्त भयाक्रांत है। उसने अपने बहुमूल्य भावों और विचारों को उपचेतन के तलघर में छिपा दिया है। एकाकीपन में उसे अपनी ही आकृति भूतों जैसी दिखाई पड़ती है। उसके मन में हर समय किसी न किसी दुर्घटना की आशंका है। हर समय उसके मन में खटका लगा हुआ है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह प्रत्येक दुर्घटना का कारण अपने आप को मानता है। मानो मेरे कारण ही लग गया मार्शल लॉ, मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया, मानो मेरे कारण ही दुर्घट हुई यह घटना। ऐसी मनस्थिति में दुःस्वप्नों का आना अस्वाभाविक नहीं, किंतु यह दुःस्वप्न उन लोगों को अवास्तविक लग सकते हैं जो बड़ी से बड़ी दुर्घटना के अभ्यस्त हो चुके हैं और जिनकी खाल मोटी हो चुकी है। क्या यह मशाल जलूस अवास्तविक है जिसमें रात को ही पत्रकार, कवि, आलोचक, मंत्री, उद्योगपति आदि शहर के कुख्यात हत्यारों के साथ शामिल होते हैं, जो दिन में विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों और घरों में मिलकर षड्यंत्र करते हैं। एक फासिस्ट खतरे का आभास देने वाला यह जलूस कैसे अवास्तविक कहा जा सकता है, जबकि दंगों में इससे भी ज़्यादा भयावह अनुभव से हम गुजर चुके हैं। इसी प्रकार सैनिक प्रशासन भी यथार्थ से अधिक अतिरंजित नहीं। इस माहौल में भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़ की बेचैनी भी काफी जानी पहचानी अनुभूति है। इस सामान्य वर्णन के प्रसंग में संभवतः सबसे मार्मिक है अपने कमरे में मृत पड़े हुए उस कलाकार का चित्र, जिसकी तृषार्थ अंतर्मुक्ति का इच्छुक था और जो निरंतर मुक्ति के यत्नों के साथ था, किंतु अचानक झोंक में आकर क्या कर गुजरा कि संदेहास्पद समझा गया और मारा गया वह बधिकों के हाथों। परंतु सबसे दहशत भरा दृश्य है स्क्रीन का, जब काव्य नायक को टूटे से स्टूल पर बिठाकर उसके शीश की हड्डी तोड़ी जा रही है और अस्थि कवच को निकालकर मस्तक यंत्र की जांच की जा रही है। पढ़ते पढ़ते जॉर्ज ऑरवेल का 1984 याद आ जाता है। जो अब फंटेसी न होकर एक जीती जागती सच्चाई बन गई है। यदि अंधेरे में कविता में वास्तविकता का केवल यही निषेधात्मक पक्ष होता तो ऐसी अनेक निषेधात्मक कविताओं की तरह अंधेरे में भी एक सपाट रचना होती। कविता का एक दूसरा पक्ष भी है जिसका संबंध अंधकार के विरुद्ध लड़ने वाली शक्तियों से है। कुछ लोगों के लिए यह एक किंवदंती मात्र है और वे उस पर खामोश रहते हैं, किंतु काव्य नायक की दृष्टि में यह कथा नहीं है, यह सब सच है। उल्लेखनीय है कि भयाक्रांत काव्य नायक के मस्तिष्क में दुःस्वप्नों के साथ जनक्रांति का भी स्वप्न आता है, यह इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। इसे कुछ लोग वास्तविकता पर आशावादी कल्पना का आरोप भी कह सकते हैं, किंतु देखना यह है कि कविता के अंतर्गत अन्य स्वप्न चित्रों के सामने ही यह स्वप्न चित्र भी काव्यात्मक मूर्तिमत्ता के साथ चित्रित हुआ है या नहीं, और असंदिग्ध है कि कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, कि आवृत्तियों के साथ आने वाला समूचा क्रांत चित्र कहीं अधिक मूर्त और सजीव है। वैसे वास्तविकता की जाँच की कसौटी इस स्वप्न के लिए भी वही होगी जो अन्य दुःस्वप्नों के लिए है। अंधेरे में की रचना की सबसे बड़ी विशेषता है परस्पर विरोधी भावचित्रों का धूप छाई मेल, जिसे आचार्य शुक्ल विरुद्धों का सामंजस्य कहते थे। अंधकार की गहरी पटभूमि पर एक आलोक रेखा खींचकर कालजयी काव्य कृतित्व का जो प्रतिमान किसी समय निराला की राम की शक्ति पूजा ने उपस्थित किया था, अंधेरे में के द्वारा मुक्तिबोध ने उसी तरह की दूसरी काव्य कृति प्रस्तुत की। अंधेरे में के अंतर्गत सर्वत्र अंधेरा ही नहीं है बल्कि चमकती हुई रंग बिरंगी मणियां भी हैं, बंदूक और गोली ही नहीं फूलों के गुच्छे भी हैं, पिशाच आकृति पुरुष ही नहीं सकर्मक सचित वेदना भास्कर नए नए सहचर भी हैं, भय ही नहीं मानव करुणा भी है, पीड़ा ही नहीं आस्था भी है। संपूर्ण कविता के अंधकार के ऊपर अस्तित्व की एक अलौकिक सुगंध परिव्याप्त है। रात्रि के श्यामल ओस से शालित कोई गुरुगंभीर महान अस्तित्व महकता है लगातार, अंधेरे में पता नहीं चलता, मात्र सुगंध है सब ओर, पर उस महक लहर में कोई छिपी वेदना कोई गुप्त चिंता छटपटा रही है, छटपटा रही है। अस्तित्व की यह सुगंध वस्तुतः मानवीयता है, कविता के अंतर्गत मानवीय उपस्थिति के ही सुगंध के रूप में व्याप्त है। इस उपस्थिति का कारण है कवि का परिप्रेक्ष्य बोध, उचित परिप्रेक्ष्य के बिना जो परिवेश अन्य अनेक कवियों के लिए अंधकारपूर्ण है, मुक्तिबोध ने उसी में यदि प्रकाश की किरण भी देख ली तो इसलिए कि उनकी दृष्टि भविष्य तक विस्तृत है। यह भविष्य ही आज के परिवेश को सही परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, इसे काल्पनिक आशावाद कहकर टाला नहीं जा सकता। अस्तित्वहीन होते हुए भी भविष्य वर्तमान को एक अर्थ प्रदान करता है, इतिहास का यह एक विरोधाभास है। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। एक कवि के नाते उनके लिए परम अभिव्यक्ति ही अस्मिता है, भाषा स्वभावतः ही अभिव्यक्ति का आधार है। अंधेरे में कविता के अंतर्गत जगह जगह इस काव्यगत अभिव्यक्ति की समस्याएं भी उठाई गई हैं। जैसे कुछ नाटकों में नाटक के भीतर एक और नाटक होता है, अंधेरे में कविता के अंदर कविता की निजी समस्याओं का निरूपण करती है। इस प्रकार एक स्तर पर यह कविता के बारे में कविता है। दिमागी स्क्रीनिंग के बाद रिहा होने पर काव्य नायक नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का संकल्प करता है। एक ओर साथियों की खोज और दूसरी ओर नए दायित्व के अनुरूप अभिव्यक्ति को संजोने का प्रयास। अब जमीन पर पड़े चमकीले पत्थरों को चुनता है, लेकिन तुरंत ही उसे उन पत्थरों की अपर्याप्तता का अनुभव होता है। किंतु असंतोष मुझको है गहरा, शब्दाभिव्यक्ति अभाव का संकेत, काव्य चमत्कार उतना ही रंगीन परंतु ठंडा, मेरे भी फूल हैं तेजस्क्रिय पर अतिशय शीतल। इसके बाद यह असंतोष जिस संकल्प का रूप लेता है उसकी झलक इन पंक्तियों में मिल सकती है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेगी बाहें जिनमें की प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। स्पष्ट है कि मुक्तिबोध के लिए भाषागत अभिव्यक्ति जीवन के अभिव्यक्ति से भिन्न रूप से जुड़ी हुई है। अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का मतलब है मठों और गढ़ों को तोड़ना, साथ ही अरुण कमल के लिए दुर्गम पहाड़ों के पार जाने का जोखिम उठाना है। इस प्रक्रिया में मुक्तिबोध ने काव्य भाषा को एक नया तेवर दिया है जो नई कविता की सामान्य काव्य भाषा की तुलना में काफी अनगढ़ और बेडौल लगती है। किंतु इससे केवल यही सिद्ध होता है कि मुक्तिबोध की भाषा काव्यात्मक नहीं है, इससे उसकी व्यंजकता असिद्ध नहीं होती। अंग्रेजी में कुछ आलोचकों ने कविता की भाषा के लिए पोएटिक और पोएटिकल दो शब्दों का प्रयोग किया है। अनुकरणशील कवि प्रायः उस पोएटिकल भाषा का प्रयोग करते हैं जो परंपरा से काव्यात्मक भाषा के रूप में प्राप्त होती है। इसके विपरीत सृजनशील कवि परंपरागत काव्यात्मक भाषा के दायरे को तोड़कर अपने नए कथ्य के अनुरूप काव्य भाषा का निर्माण करता है। जो आरंभ में खुरदरी लगते हुए भी अपनी अर्थवत्ता में जानदार होती है। इस दृष्टि से निराला के समान ही मुक्तिबोध की भाषा भी तेजस्क्रिय है। जिस प्रकार राम की शक्ति पूजा में समास बहुला संस्कृतनिष्ठ हिंदी के साथ ही बोलचाल की भाषा के टुकड़े पिरोए हुए हैं, उसी तरह अंधेरे में भी भाषा के दोनों रूप मिलते हैं। कविता में भाषा कठिन है या सरल, संस्कृतनिष्ठ है या बोलचाल की आदि, प्रश्न अप्रासंगिक है। अंधेरे में जैसी नाटकीय कविता में देखना यह है कि भाषा का नाटकीय उपयोग किस रूप में किया गया है और किस हद तक, और कहना न होगा कि अंधेरे में के अंतर्गत संदर्भ भेद से भाषा की नाटकीय भंगिमाएं विविध हैं। कहीं सघन बिंबों की माला है तो कहीं ठेठ सपाट बयानी, कहीं सांवली हवाओं में काल टहलता है तो कहीं इस प्रकार के दो टूक कथन। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज चल नहीं सकता। मुक्तिबोध की भाषा पर अनगढ़ता का आरोप लगाते समय इस बारे में सोच देखना चाहिए कि जिस तिलिस्मी दुनिया की सृष्टि से सृष्टि वे कविता में कर ले जाते हैं, वह क्या असमर्थ भाषा में कभी कभी संभव है। वस्तुतः अंधेरे में का खौफनाक काव्य संसार समर्थ भाषा की ही सृष्टि है। मुक्तिबोध जब कहते हैं कि बिंब फेंकती वेदना नदियां, तो वे एक तरह से उस कवि कल्पना की ओर संकेत करते हैं जो अपनी अजस्त्र सृजनशीलता में बिंब फेंकती चलती है। वस्तुतः कवि की शक्ति कल्पना के उस वेग और विस्तार से मापी जाती है जिसे अंग्रेजी में स्वीप ऑफ इमेजिनेशन कहते हैं, और कहना न होगा कि अंधेरे में की कल्पना शक्ति अपने समवर्ती समस्त कवियों में सबसे विकट और विस्तृत है। इसीलिए वे प्रगीतों के युग में भी महाकाव्यात्मक कल्पना के धनी और नाटकीय प्रतिभा के प्रयोग करता है। वस्तुतः मुक्तिबोध की अभिव्यक्ति की अर्थवत्ता फुटकल शब्द प्रयोगों से नहीं आंकी जा सकती और न दो चार बिंबों अथवा भावचित्रों से मापी जा सकती है। उनकी अभिव्यक्ति की गरिमा का पता उस विराट बिंब लोक से चलता है जो अंधेरे में जैसी महाकाव्यात्मक कविता अपनी समग्रता में प्रस्तुत करती है। इस संदर्भ के द्वारा ही कविता के अंतर्गत आए हुए छोटे छोटे सामान्य सपाट कथन भी अर्थ गौरव से पूर्ण लगते हैं। उदाहरण के लिए, क्या करूं, किससे कहूं, कहां जाऊं, दिल्ली या उज्जैन जैसी सीधी साधी उक्ति भी कविता के नाटकीय संदर्भ में आधुनिक मानव की ऐतिहासिक बेचैनी को ध्वनित करती है। अंधेरे में भाषा की ऐसी नाटकीय संभावनाओं के उद्घाटन का अनूठा काव्य प्रयास है। अंधेरे में मुक्तिबोध के प्रतिनिधि काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है कि ही अंतिम कविता नहीं, कदाचित उनकी अंतिम रचना भी है, जिसे कवि कर्म की चरम परिणति भी कहा जा सकता है। कुल मिलाकर इसे यदि नई कविता की भी चरम उपलब्धि कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। समाप्त।